हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में। और आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हिज होलीनेस धीर शांत स्वामी महाराज। तो एक संक्षिप्त परिचय, महाराज इस्कॉन संस्था से जुड़े 1972 में। वहाँ पर महाराज ने इस्कॉन राधा लंडनेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर भक्ति वेदांता मैनर में महाराज ने ज्वाइन किया फुल टाइम। और उसके बाद से लेकर अब तक इस्कॉन में विभिन्न प्रकार की जितनी सेवाएं हैं सारे महाराज के इंट्रोडक्शन में लिखी हैं। संक्षिप्त में, महाराज का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस्कॉन स्टॉकहोम स्वीडन जो सेंटर है उसको स्थापित करने में 1975 में। उसके बाद महाराज भारत आए 1976 में और मायापुर, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे इन सभी जगह महाराज ने प्रचार किया। उसके बाद 82 से 89 में महाराज ने इस्कॉन फिनलैंड वहाँ पे जो सेंटर है उसकी स्थापना की। और वहाँ पे जय नगर संकीर्तन हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम फेस्टिवल, नए भक्तों को कल्टीवेट करना, प्रशिक्षण करना, वहाँ पर महाराज मंदिर के अध्यक्ष रहे। और महाराज के निरीक्षण में जो वो सेंटर था पूरे विश्व में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता था। और इस्कॉन, इसके बाद महाराज ने लगभग 11 साल इस्कॉन साउथ वेस्ट इंग्लैंड आउटरीच प्रोग्राम में वहाँ पर सेवा की, जिसमें नामहट स्कूल प्रेजेंटेशन, इंटरफेथ कल्टीवेशन और नए भक्तों का प्रशिक्षण। वहाँ ने इको फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्थापना किया इंग्लैंड के अंदर साउथ वेस्ट में, जहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट और जितना भी वर्णाश्रम धर्म है उस दिशा में महाराज ने कार्य किया। और 2015 में महाराज ने संन्यास ग्रहण किया और तब से लेकर महाराज चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, इंग्लैंड में, भारत में, इन सभी पूरे विश्व में अलग अलग चारों दिशाओं में महाराज यात्रा करके ट्रैवल करते हैं। तो आइए हम महाराज का एक बार हृदय से स्वागत करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दिस मोबाइल फोन्स को आप साइलेंट मोड पर रखिएगा। हरे कृष्णा।
दिस मॉर्निंग वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट 71।
आज सुबह हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम
नमो भगवते वासुदेवाय।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। ब्रह्मन् हे ब्राह्मण तथा अतएव गच्छ जाओ, भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा, नाभाग तनयम महाराज नाभाग के पुत्र नृपम राजा अम्बरीश को क्षमापये, उसे जाकर शांत करने का यत्न करो। महाभागम महापुरुष शुद्ध भक्त तथा तत्पश्चात शांति ही शांति भविष्यति हो जाएगी। अनुवाद। अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तात्पर्य। इस प्रसंग में मध्व मुनि ने करुण पुराण से निम्नलिखित उद्धरण दिया है। तो ये 5 श्लोक हैं, उसका अनुवाद। महाराज अम्बरीश तथा दुर्वासा मुनि, विषय इस कथा से ये शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी समेत सारे देवता भगवान विष्णु के अधीन हैं। अतएव जब किसी वैष्णव का अपमान होता है तो भगवान विष्णु उस अपमानकर्ता को दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बचा नहीं पाता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी या शिव जी भी नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवे स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जो आज का श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये दुर्वासा मुनि के संदर्भ में है जब उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया।
Some of the substance of these verses is to be very, very careful about committing offenses to other Vaishnavas.
इन सभी श्लोकों का जो सार है वो ये है कि बहुत सावधान रहना चाहिए कि वैष्णव के प्रति व्यवहार में।
When I first met Srila Prabhupada, the first thing I did was make an offense to his lotus feet.
महाराज बता रहे हैं, जब मैं सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी से मिला तो पहली चीज मैंने उनके चरण कमलों में अपराध किया।
You want to hear the story?
आप वो कथा सुनना चाहते हैं?
I was coming to the temple. I was a hippie. I had long hair, beard, mustache, and I was thinking that I was either God or becoming God.
तो महाराज कह रहे हैं, उस समय मैं मंदिर आता था, हिप्पी था, मेरे लंबे बाल थे, दाढ़ी मूछ सब था, और मैं ऐसे प्रदर्शित करता था कि मैं खुद भगवान हूँ या मैं भगवान बनने की प्रक्रिया में हूँ।
And there was one devotee one morning. He was preaching to me. He was sitting on the stairs leading up to the other ashrams, and I was standing. And suddenly he bowed down right at my feet.
तो एक भक्त मुझे वहाँ पर प्रचार कर रहा था, तो जो आश्रम की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं वो वहाँ पर बैठा हुआ था और मैं खड़ा हुआ था, तो वो मेरे को प्रचार कर रहा था, तो अचानक उसने झुक कर मुझे प्रणाम किया।
I was thinking, well, this person really understands me.
तो मैंने सोचा कि ये व्यक्ति सही में मुझे पहचानता है।
But when he got up, he said, "Oh, did you see my guru? See, Prabhupada was on the first floor, and he had his room, but the bathroom was along the corridor. So he was walking along the corridor to visit the bathroom."
तो उसने जब प्रणाम करके वो खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे आध्यात्मिक गुरु को देखा पहले माले पे? उस समय बाथरूम कॉरिडोर के दूसरी तरफ थे, तो शिला प्रभात अपने कमरे से निकलकर बाथरूम जा रहे थे।
So naturally, I was a little disappointed. It wasn't all about me.
तो मैं ये बात सुनके थोड़ा निराश हो गया कि ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा था।
And this devotee said, "And you can come and see him tonight. He's giving a class at 7:30 beginning."
और उसने कहा कि तुम आज शाम में आके उनसे मिल सकते हो। आज शाम में 7:30 वो कक्षा देंगे।
Well, you know, as hippies, we didn't have any concept of time. So I was a little late. I arrived at 8:00.
तो महाराज कहते हैं, क्योंकि उस समय हिप्पी होते थे तो हिप्पी में टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, तो एज यूजुअल मैं थोड़ा लेट पहुंचा 8:00।
And when I walked into the temple, Prabhupada was on the left side. He was already giving class, and then the deities were on the right side. So I was to choose where to sit, and I decided to sit as far away from Prabhupada as possible. And I was sitting right next to the deities.
तो जब मैं मंदिर कक्ष में प्रवेश किया तो लेफ्ट साइड पे श्रील प्रभुपाद थे और दाएं साइड पे डीटीज थी, तो मुझे चुनना था कि मुझे किस तरफ बैठना है। तो मैंने एक ऐसा स्थान निर्धारित किया जो जितना ज्यादा दूर हो सके श्रील प्रभुपाद से, तो डीटीज की तरफ जाके मैं बैठ गया।
As soon as I sat down, I looked at Prabhupada and I looked at the people around in the temple, and I was thinking, why are these young people listening to this old man?
तो जैसे ही मैं बैठा, मैंने शिला प्रभुपाद की तरफ देखा और जितने लोग बैठे थे इस कक्ष में उनकी तरफ देखा, और पहला विचार मेरे मन में आया कि क्यों इतने सारे लोग इतनी गंभीरता से इस बूढ़े व्यक्ति को सुन रहे हैं।
You know, the hippies, we believed that the older generation had done nothing for society, and we were going to start a new revolution in consciousness.
तो हिप्पी के मत के अनुसार हमारा विश्वास था कि जो पुरानी जनरेशन है, बड़ी जनरेशन है, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया और हम एक क्रांति लाएंगे समाज में चेतना के स्तर पर।
After some time, devotees started looking back in my direction, and I was wondering, what are they looking at me for?
तो कुछ समय बाद सारे भक्त मुड़के मुझे देखने लग गए और मैं ये सोच रहा था कि सारे मुड़के मुझे क्यों देख रहे हैं।
This went on for a good 15 minutes.
तो ऐसा 15 मिनट तक चलता रहा।
And then I understood what the problem was.
तब मैं समझा कि क्या समस्या था।
The problem was I hadn't changed my socks in about 8 or 9 days.
तो समस्या था कि 8-9 दिन से मैंने अपने सॉक्स नहीं बदली थी।
The head Bajari, she got up and she didn't light one incense stick. She had a bunch of them in her hat and she lit the whole bunch just to counteract the smell of my feet.
तो वहाँ पे जो head Pujari थी, उन्होंने एक अगरबत्ती नहीं जलाई, पूरा bunch लिया अगरबत्ती का और उसको जलाया उस smell को counteract करने के लिए.
And after Prabhupada's class, and he left the temple. One devotee, one of senior devotee, came up to me and he asked me a question.
तो जब कक्षा खत्म हो गई, प्रभुपाद जी चले गए, तो वहाँ के एक वरिष्ठ भक्त आए और मुझसे आके एक प्रश्न पूछा।
He said, "Do you want to come back here again?"
तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, क्या आप इस मंदिर में दोबारा वापस आना चाहते हैं?
I said, yes, why not?
मैंने कहा हाँ क्यों नहीं?
Can you please change your socks before you come?
क्या आप अपने सॉक्स बदल के आ सकते हैं?
So from that day on, I had clean feet. From that day on, I have had clean feet.
तो उस दिन के बाद से मेरे जो पैर हैं हमेशा साफ रहते थे।
Here is me looking at the pure devotee, looking for some faults, and I could not even wash my feet.
तो मैं वहाँ बैठा एक शुद्ध भक्त की तरफ देख रहा था और उनमें कोई कमियाँ निकालने का प्रयास कर रहा था और मैं अपने अंदर इतनी बड़ी कमी थी उसको भी नहीं देख पा रहा था।
Say one moment's association with a pure devotee changes your life.
शुद्ध भक्त के संग का एक क्षण भी आपका पूरा जीवन बदल सकता है।
To purify yourself and bathing in the Ganges, you have to do that many times. But with just one moment's association with a pure devotee, your whole life transforms.
एक पवित्र नदी गंगा में कई बार स्नान करने के बाद आप शुद्ध हो सकते हैं, परंतु शुद्ध भक्त के संग का एक क्षण से आप शुद्धिकरण को प्राप्त कर सकते हैं।
Anyway, my offensive mentality continued.
फिर भी जो मेरा अपराध करने की मानसिकता थी वो जारी रही।
After joining the temple, I was probably a devotee for about 2 months.
मंदिर ज्वाइन करने के बाद लगभग मैं दो महीने हुए थे मुझे भक्त बने।
And the temple president one morning was giving a Srimad Bhagavatam class.
और मंदिर के अध्यक्ष एक दिन प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा दे रहे थे।
And I was thinking within my mind, what's the big deal?
और मैं मन के अंदर सोच रहा था इसमें कौन सी बड़ी बात है?
I'm sure I could give a class like that.
तो ये तो मैं भी कर दे सकता हूँ क्लास।
The next morning after Mangal Arati, the same temple president, he made an announcement.
तो अगले दिन मंगल आरती के बाद उन्हीं मंदिर के अध्यक्ष ने एक अनाउंसमेंट की।
He said that Bhakta David was going to give the Bhagavad Gita class that night.
तो उन्होंने कहा भक्त डेविड उस दिन शाम में भगवत गीता क्लास देंगे।
I was shocked.
तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा ये सुन के।
Did he read my mind?
क्या इन्होंने मेरा मन पढ़ लिया है?
I came running. I said, Prabhu, I'm so sorry.
तो मैं भागता हुआ गया और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो।
I said, you know, better to give the class to someone more qualified.
कि कोई और योग्य व्यक्ति को आप कक्षा देने का ये अवसर प्रदान करें।
He said, no, it's okay. You can do it.
तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप दे सकते हो।
I said, but I'm not very versed with the philosophy.
मैंने कहा कि मैं दर्शन में इतना पारंगत नहीं हूँ।
He said it's okay, just hear what you've Just speak what you've heard. Speak something that you've heard.
तो उनका कुछ दिक्कत नहीं है. आपने जो सुना है बस उसमें से आप कुछ बोल दीजिए.
So there was no way around it. In those days, if the temple president said you were going to do something, you had to do it.
तो उन दिनों में कोई आप बच के नहीं जा सकते थे. उन दिनों में अगर मंदिर अध्यक्ष ने आपको कुछ कहा है आप ये करोगे तो आप करोगे.
Yes, little different today, huh?
आज का समय अलग है. उस समय अलग है.
So that evening, because we didn't chant Jai Radha Madhava, because Prabhupada hadn't told us that song yet, so we would chant Hare Krishna mantra before the class. So I exhausted the Hare Krishna mantra as much as I could.
तो उस शाम में, उस समय हम जय राधा माधव नहीं गाते थे, तब तक प्रभुपाद जी ने हमें भजन नहीं दिया था, हरे कृष्णा कीर्तन करते थे. तो जितना हरे कृष्णा कीर्तन मैं एग्जॉस्ट कर सकता था मैं उसको कर दिया. जितना लंबा कीर्तन खींच सकता था खींचा.
Then I struggled through the Sanskrit.
उसके बाद मुझे संघर्ष हुआ संस्कृत पढ़ने में.
I even struggled through the English because I had taken so many drugs, I became illiterate.
तो मुझे अंग्रेजी पढ़ने में भी बहुत संघर्ष हुआ क्योंकि मैं इतने ड्रग्स ले चुका था कि मैं पढ़ना लिखना भूल गया था उसके प्रभाव से.
And when I came to giving the class,
जब मैं क्लास देने आया,
this is what I said.
तो ये मैंने कहा उस कक्षा में.
Well, actually,
वास्तव में,
we're not this body.
हम ये शरीर नहीं है.
We're spirit souls.
हम एक आत्मा हैं.
Does anyone have any questions?
किसी का कोई प्रश्न है?
There were no questions.
किसी का कोई प्रश्न नहीं था.
And my face went red like a beetroot.
मेरा जो चेहरा है वो लाल पड़ गया चुकंदर की तरह.
And you could see the false ego from this head of mine rise and enter into the ether.
और आप देख सकते थे मेरे यहाँ सिर से जो छूटा अहंकार है वो पिघल के ऊपर हवा में जा रहा है.
I vowed there and then.
तो मैंने वहीं पर निश्चय कर लिया.
That I would never look at one of my seniors and think that I was better than them.
कि मैं कभी अपने जो वरिष्ठ हैं उनकी तरफ देख के ये कभी नहीं सोचूंगा जीवन में कि मैं उनसे बेहतर हूँ.
So these are the kind of lessons we learn in the beginning of our Krishna consciousness.
तो इस प्रकार के शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में.
Because the thing is that if you point at someone, what are you actually doing?
अगर आप किसी की तरफ ऐसे पॉइंट करते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं?
You got one finger pointing, but three fingers pointing at yourself.
एक उंगली सामने है परंतु तीन उंगलियां आपकी अपनी तरफ हैं.
And one finger pointing upwards.
और एक जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है.
So the idea is that we want to go upwards. We want to go back home, back to Godhead.
तो इसका संदर्भ है अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं वापस भगवत धाम.
And the only way you're going to do it is to bring that finger towards you as well.
तो जो एक उंगली है जो दूसरों की तरफ की हुई है उसको मोड़कर अपनी तरफ कर लीजिए.
What's wrong with me?
कि मेरे में क्या कमी है?
How can I make some changes in my life?
मैं अपने जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता हूँ?
Never mind about anyone else.
किसी और के बारे में चिंता मत करो.
I have enough problem of my own.
मेरे जीवन में पर्याप्त समस्याएं हैं.
So let me concentrate on my own Krishna consciousness.
तो मैं अपने खुद की कृष्ण भावनामृत पे केंद्रित हूँ.
But this is the problem. There is this comparing and competing.
तो ये समस्या है एक तुलना करना और स्पृधा करना.
We compare and then we compete.
पहले हम तुलना करते हैं किसी अन्य से उसके बाद स्पृधा करते हैं उससे.
We know the story of Lord Indra.
हमें इंद्र की कथा पता है।
When he saw that, when he got informed that Krishna was taking the offerings that were meant for him and offering them to Govardhan Hill, he became very angry.
जब भगवान कृष्ण वो सारा भोग इंद्र का छीन के गोवर्धन को दे रहे थे, तो ये देखकर इंद्र बहुत ही क्रोधित हुए।
And he started comparing.
और उसने अपनी तुलना करना प्रारंभ कर दिया।
Who is this destructive boy these people are calling Krishna?
ये कौन नकारात्मक लड़का है जिसको लोग कृष्ण कह रहे हैं?
How does he dare to stop the sacrifice meant for me?
इस बालक की कैसे हिम्मत हुई जो यज्ञ मुझे यज्ञ मेरे लिए होना था उसको रोकने की?
These people of Vrindavan have neglected my authority. How do they dare neglect me my share?
ये वृंदावन के वासियों ने मेरी अथॉरिटी को निग्लेक्ट किया है और ये सारा जो भोग है इन्होंने मेरे को ना चढ़ा के गोवर्धन को दिया है।
Is he doing okay? Niranjan Swami told me once, be careful with your translators.
परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज ने एक बार मुझे कहा था कि आपके जो अनुवाद कर रहे हैं उनसे बहुत सावधान रहा करो।
I said to him, why should I be concerned about my translators?
तो मैंने प्रश्न पूछा कि मैं जो अनुवाद कर रहे हैं उससे इतना सावधान क्यों रहूं?
He said, because you never know what they're saying.
क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं।
If you say he's doing all right, then we'll carry on. Yeah? He's all right. So, this is comparing. He starts to compare his sacrifice to the sacrifice to Govardhan Hill. So, the offerings of Govardhan Hill.
तो ये तुलना करना है। अपने यज्ञ को गोवर्धन के यज्ञ से तुलना करना। जो भोग उनको चढ़ना था उसी की तुलना करना गोवर्धन से।
Then he starts competing.
और उसके बाद उन्होंने स्पृधा करना प्रारंभ कर दिया।
संवर्तका
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 Go there now and invade the whole area of Vrindavan.
अभी वहां पर जाओ और उस पूरी भूमि को डुबा दो।
Destroy them.
उसको खत्म कर दो।
This is After comparing, you compete. He's now going to destroy the inhabitants of Vrindavan.
तुलना करने के बाद स्पृधा की और ब्रजवासियों का पूरा विनाश करने के लिए प्रयास किया।
Well, we know the story. Of course, Indra, because of his pride and arrogance, he became defeated and he had to then take shelter of Krishna's lotus feet and ask for forgiveness.
तो हमें ये कथा पता है कि इंद्र अपने झूठे अहंकार के कारण पराजित हुआ और बाद में उसको कृष्ण की शरण प्राप्त करनी पड़ी अपने इस अपराध से क्षमा के लिए।
So there's two sides. We can choose one of these two in regards to our relationships with others.
तो ये दो तरफा है जिसका हम चुनाव कर सकते हैं दूसरों के संदर्भ में।
This is one side.
ये एक पहलू है।
There was two friends walking.
दो मित्र चल रहे थे।
It was in a jungle area.
एक जंगल में।
And one tiger, he saw them walking along.
तो एक शेर ने देखा इन दो लोगों को जाते हुए।
And he was getting ready to attack them.
और वो तैयारी कर रहा था उन पर आक्रमण के लिए।
And the two men, they saw what was going on. They were about to be attacked by a tiger.
और जब इन दो मित्रों ने देखा कि क्या चल रहा है और अभी हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है शेर के द्वारा।
So one of them, he got into his bag and he pulled out a pair of running shoes.
तो उसने तुरंत अपने बैग से भागने वाले जो जूते होते हैं वो निकाल लिए.
And he took his other shoes off and put on his running shoes.
तो उसने जो जूते पहने हुए थे उसको उतार दिया और ये भागने वाले जो जूते हैं उनको पहन लिया.
And his friend said, "What are you doing?"
तो उसके मित्र ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो?
So I'm putting on my running shoes.
मैं भागने वाले जूते पहन रहा हूँ.
You think you can run faster than a tiger?
तुम्हें क्या लगता है कि तुम शेर से तेज भाग सकते हो?
No, I don't think I can run faster than a tiger, but I'll be able to run faster than you. Because a tiger only wants to eat one of us.
तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं शेर से तेज भाग सकता हूँ, परंतु निश्चित रूप से मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ, क्योंकि जो शेर है शायद हम में से एक को ही खाना चाहता है.
So this is a mentality. Think of yourself first. Never mind about anyone else.
तो एक मानसिकता ये है कि अपने बारे में सोचो, दूसरों की परवाह बिल्कुल मत करो.
This is another mentality.
एक अन्य मानसिकता ये है.
There were two men again. They were walking in a desert.
तो दो मित्र थे, दो लोग जा रहे थे एक रेगिस्तान में.
And of course, desert means it's very hot. And become thirsty.
तो रेगिस्तान का अर्थ है वहाँ बहुत गर्मी है, प्यास लगती है.
So they were having a discussion, but the discussion ended in an argument.
तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे, परंतु चर्चा करते करते बहस हो गई.
And one of them hit the other right in the face.
और एक ने दूसरे के मुंह गाल पे मार दिया.
So the one that was hit in the face, he knelt down onto the sand, and he wrote, "Today my friend hit me in the face."
तो जिसको मार पड़ी थी वो झुक गया और वहीं रेगिस्तान में मिट्टी में उसने लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे मारा है.
And they walked a little further.
उसके बाद थोड़ी आगे चले गए.
An oasis, some lake of water.
तो थोड़ी ही आगे जाने पर वहां पर एक ओएसिस था, पानी का पानी जल था.
And that was very good for them because they could relieve their thirst.
तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, अपनी प्यास बुझा सकते थे वो.
And the one that got hit in the face, he decided to go actually into the water and bathe.
तो जिसको मार पड़ी थी उसने सोचा कि वहां जाकर उसमें स्नान करने का स्नान किया.
But he started sinking very fast.
परंतु जैसे स्नान कर रहा था वो डूबने लग गया.
He was sinking sands.
और बहुत तेजी से डूबने लगा.
And he could not pull himself free.
और अपने आप को वो बचाने के प्रयास के बावजूद बचा नहीं पा रहा था.
So he called out to his friend, "Help me!" He had his arm up like this.
और उसने अपने दूसरे मित्र की तरफ देख के कहा, मुझे बचाओ, और अपना हाथ आगे किया.
Just before sinking, his friend picked him up, pulled him out.
और डूबने से बिल्कुल पहले क्षण में उसके मित्र ने हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल लिया.
Wow, what did he do next?
तो आगे उसने क्या किया?
He got some tools from his bag and he carved it in stone. Today, my friend saved my life.
तो उसने अपने बैग से कुछ औजार निकाले और पत्थर के अंदर इस बात को लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरा जीवन बचाया है.
So his friend was asking, "How? What is this you're doing? When I hit you in the face, you wrote in sand. And when I saved your life, you're now carving it in stone."
उसके मित्र ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? जब मैंने तुम्हारे मुंह पे मारा तो तुमने रेत में लिखा कि मेरे मित्र ने मुझे मारा है. अब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पत्थर के अंदर लिख रहे हो.
He said, "Yes, the writing in the sand will only last for a few days at the most."
रेत में लिखना जो मैंने लिखा है सिर्फ कुछ दिन तक वो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा.
The wind will blow it away.
तो जो हवा है उससे वो मिट जाएगा.
But when you carve in stone, it will last forever.
परंतु जब आप पत्थर में लिखते हो तो वो हमेशा के लिए लिखा रहेगा.
So the moral is, whatever injustice you have, write it in the sand.
तो इसका से शिक्षा ये है कि आपके साथ जितना भी अन्याय आपको लग रहा है हो रहा है,
Whatever injustice you receive from others, write it in the sand.
अन्य लोगों से जितना भी अन्याय आपको प्राप्त होता है, उसको आप रेत में लिखिए.
And anything favorable that you are given from others, carve it in stone.
और अन्य से जितना भी फेवरेबल चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, उसको पत्थर में लिखिए.
When Yudhisthira was being instructed by Bhishma Dev regarding leadership, Bhishma Dev was on the bed of arrows. Krishna was there, and Krishna instructed Bhishma Dev, "Please give knowledge to Yudhisthira on leadership."
जब युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव से नेतृत्व पे शिक्षा प्राप्त हो रही थी, भीष्म देव तीर के जो पूरा बेड है उस पर लेटे हुए थे, वहां पर कृष्ण थे और कृष्ण ने भीष्म देव से निवेदन किया था कि युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दें.
One of the questions Yudhisthira asked Bhishma Dev was, if someone is giving you a hard time, if someone is abusing you, if someone is intimidating you, and no matter what you do to try to rectify the situation and make up friends, it's not working. The person is consistently intimidating, provocating, and giving you a hard time. What should you do?
तो एक प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने ये पूछा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, आपके साथ बहुत अन्याय कर रहा है, और सारे प्रयास आपने कर लिए इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, फिर भी आपके साथ वो ऐसा करना जारी रख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?
Bhishmadev said, as long as you don't react, if you don't react, if you remain peaceful, then you will receive all the good qualities of your offender, and they will receive all your bad qualities.
तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तक आप उसको रिएक्ट नहीं करते, आप शांति से उसको सहते रहते हैं, तो उनकी जितने अच्छे गुण हैं आपके अंदर आ जाएंगे और आपके जितने बुरे गुण हैं उनमें चले जाएंगे.
हरि बोल. That's a wonderful way to make spiritual advancement.
तो ये बहुत ही अद्भुत तरीका है आध्यात्मिक प्रगति करने का.
Bhaktisiddhanta is another story. Bhaktisiddhanta, he would go from town to town preaching with his disciples. And in each place he would preach, there would be one person following who would make disruption while the class was going on.
एक और अन्य कथा आती है जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे से तीसरे शहर जाते थे प्रचार करने के लिए, तो जब वहां पर कथा करते थे, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता था जो बहुत ही उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता था.
And Bhakti Siddhanta informed his disciples that, because they tried to stop him, but Bhakti Siddhanta said, just leave him alone.
और जब भी उनके शिष्य उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कहते, नहीं, इसको अकेला छोड़ दो, ठीक है.
You know, but you can imagine from the point of view of the disciples, it was very offensive to do this to their guru.
फिर भी आप उनके जो शिष्य हैं, उनके नजरिए से देखें, तो बहुत ही अपराधजनक है कि कोई आपके गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है.
And some time passed, many years passed. When this was going on, one day there was a kirtan in one of the temples. Bhaktisiddhanta was staying in one of the mats, and there was a kirtan going on. He came down, he asked, "Oh, is it a festival day today?" And the reply was, "No, it's not a festival day, Guru Maharaj. We're having kirtan because your worst enemy has just left his body."
तो ऐसा कई सालों तक चलता रहा. तो एक बार वो एक मठ में रुके हुए थे और उन्होंने देखा नीचे बहुत जोर से कीर्तन चल रहा है, तो वो नीचे उतरे और उनके पास गए कि आज क्या कोई उत्सव है? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरु महाराज, आज कोई उत्सव नहीं है, परंतु आपके जो सबसे बुरे दुश्मन थे आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इसलिए हम उसकी खुशी मना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं.
Bhakti Siddhanta said, stop the kirtan.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कीर्तन बंद करो.
He is not my worst enemy.
वो मेरा सबसे बुरा दुश्मन नहीं है.
He is my best friend.
वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है.
Because he taught me humility.
क्योंकि उन्होंने मुझे विनम्रता की शिक्षा दी.
He taught me tolerance.
उन्होंने मुझे सहनशीलता सिखाया.
And he taught me forgiveness.
और उन्होंने मुझे क्षमा करना सिखाया.
These are some examples which we can follow.
तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं.
Because actually the real mode of a Vaishnava is a Vaikuntha mode. The Vaikuntha mode is complementing and cooperating and complementing.
तो ये वैष्णव का असली भाव है, वैकुंठ का भाव, कि उनका प्रशंसा करना और उनका सहयोग करना.
When Krishna lifted Govardhan Hill, because it was a very difficult situation for all the residents of Vrindavan, torrents of rain, lightning, thunder, it was horrific. And they all came and took shelter of Krishna. Please, Krishna, help us. We are drowning. We are being inundated by the clouds of devastation.
जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, क्योंकि सारे ब्रजवासी बहुत असहाय अवस्था में थे और बहुत ही खतरनाक परिस्थिति थी. जोर जोर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, गर्जना हो रही थी और सभी ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे थे कि हम सब डूब रहे हैं, हे भगवान कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए.
कृष्ण said, yeah, I will protect you.
भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा.
So he went and he lifted Govardhan Hill.
तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया.
Because he made a joke at the same time. Because from the material point of view, the left hand is weaker than the strong, and then the right.
और ये करते हुए साथ में ही उन्होंने एक परिहास भी किया, क्योंकि जो आपका बायां हाथ है भौतिक दृष्टि से वो कमजोर होता है दाएं हाथ से.
This is the strongest finger.
और ये सबसे शक्तिशाली फिंगर है.
Krishna used this one.
परंतु भगवान कृष्ण ने इस उंगली का इस्तेमाल किया.
So this is Krishna's humorous nature.
तो भगवान कृष्ण का ये खुश मिजाजी वाला बहुत ह्यूमरस है.
So there he is, he's lifting Govardhan Hill. Does the residents of Vrindavan start discussing and arguing amongst each other whether they should go under the hill?
And when Bhagwan Krishna ne is ungli pe Govardhan Parvat uthaya, to sare brajvasi aapas mein charcha kar rahe hain ki hame iske andar jana chahiye nahi jana chahiye.
No, they were in full cooperation.
Aur wo aapas mein pura sahyog kar rahe the.
And then when they entered underneath the hill,
जैसे ही वो गोवर्धन पर्वत के नीचे गए,
they started complimenting Krishna.
और जैसे ही वो गोवर्धन पर्वत के नीचे गए, उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया.
And then they had a festival.
और उसके बाद एक उत्सव हुआ.
We're not hungry. We're not thirsty. We don't even need to sleep.
जहाँ उन्हें कोई भी भूख नहीं लग रही थी, कोई भी प्यास नहीं लग रही थी और सोने की भी आवश्यकता नहीं थी.
Krishna lifted Govardhan Hill and then we entered underneath.
भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं और हम सब उसके नीचे हैं.
And that made Indra even more angry.
और ये देखकर इंद्र का जो क्रोध है और बढ़ गया.
Not only did Krishna save the residents of Vrindavan by lifting up Govardhan Hill, but they were having a party at the same time.
कि भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासी की रक्षा ही नहीं की गोवर्धन पर्वत उठा के, अब वो आपस में एक पार्टी कर रहे हैं.
So this is Vaikuntha mood.
ये वैकुंठ भाव है.
Free from any anxiety.
हर प्रकार की चिंता से मुक्ति.
This is what we've got to try to develop.
इसी को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए.
There's a nice song One of my god brothers has written. I would like to read this song out.
एक बहुत ही सुंदर song गीत है जो मेरे गुरु भाई ने लिखा है. मैं वो song पढ़ना चाहूँगा.
No, correction. It's not a song. This is a story.
नहीं, ये एक गीत नहीं है, सॉन्ग नहीं है, ये एक कहानी है.
Once there was a man who decided to quit.
एक बार एक व्यक्ति था जिसने सब कुछ छोड़ने का प्रयास किया.
Nothing was working for him.
उसके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर रहा था.
And he quit his job.
उसने अपना जॉब छोड़ दिया.
He left his family.
अपना परिवार छोड़ दिया.
And he was going to even commit suicide.
और वो आत्महत्या करने के बारे में मनन करने लगा.
But he decided to have one last chance to have a word with God.
तो उसने सोचा एक आखिरी प्रयास मैं कर लेता हूँ और भगवान से बातचीत करने का उसने प्रयास किया.
So he went into the woods and he called out, "God, give me one good reason why I should not commit suicide."
तो वो लकड़ियों की तरफ गया जंगलों में और वहां जाके उन्होंने चिल्लाया कि ये भगवान एक ऐसा अच्छा कारण बताओ कि जिससे मैं आत्महत्या ना करूं.
And to his surprise, God started to answer his question.
और उसको बहुत हैरत अंगेज हुई कि भगवान उसके इस प्रश्न का उत्तर देने लग गए.
He said, in this wood, I planted two seeds. One was the seed of a fern. Fern, you know fern? Fern is like it's a thing that covers the floor of the forest.
तो भगवान ने कहा मैंने यहाँ दो प्रकार के बीज बोए. पहला है फर्न, एक ऐसे जो प्लांट है जो पूरा का पूरा भूमि को कवर कर लेता है.
And I also planted the bamboo.
और मैंने जो बैम्बू है उसका बीज भी बोया.
Yes. The first year, the fern started to shoot.
पहले साल में जो पहला प्रकार का बीज है वो उगना शुरू हो गया.
There was no bamboo.
और बैम्बू का बीज बिल्कुल नहीं निकला.
The second year, the fern started to spread throughout the forest.
दूसरे वर्ष में जो पहला जो बीज प्लांट निकल रहा था वो पूरे जंगल में फैलना प्रारंभ कर गया.
There was no bamboo.
और बैम्बू बिल्कुल नहीं था.
Third year, fourth year, it was only to the fifth year that the bamboo shoots started to appear.
तो ऐसा तीसरा चौथा साल निकल गया. पांचवें साल में जाके जो बम्बू का जो बीज था, बांस का जो बीज था, वो थोड़ा सा निकलना प्रारंभ हुआ.
God said, even though it took 5 years to appear, I never gave up on the bamboo.
तो भगवान ने कहा कि 5 साल लग गए उस बांस के जो बीज है उसको निकलने में, फिर भी मैंने उस पर कभी हार नहीं मानी, उसको प्रयास करना नहीं छोड़ा.
And within 6 months of the shoots, it started to rise very fast, 6 feet tall within 6 months.
और अगले 6 महीने में वो बहुत तेजी से बढ़ना प्रारंभ हुआ. लगभग 6 फीट बड़ा हो गया 6 महीने में.
What was the bamboo doing all this time?
उस सारे समय में जो बांस का जो बीज है वो क्या कर रहा था?
Who can say?
आप में से कौन बता सकता है?
Growing roots.
वो अपनी जड़ें गहरी कर रहा था.
Strong, strong roots.
बहुत शक्तिशाली जड़ें.
And the moral of this story is don't compare yourself with others.
इस कहानी की शिक्षा ये है कि अपनी तुलना अन्यों से ना करें.
Don't give up hope.
उम्मीद की किरण को ना छोड़ें.
Things may not be going well now.
हो सकता है आपके जीवन में चीजें अभी अच्छी ना चल रही हों.
But wait some time.
परंतु धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए.
Many young boys have been coming up to me explaining how they just can't get their life sorted out.
महाराज कह रहे हैं कई युवा पीढ़ी मेरे पास आती है, कई भक्त आते हैं, वो कहते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अपनी लाइफ को सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो,
And it's affecting my spiritual life.
और वो मेरे आध्यात्मिक जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है।
But don't use any excuse for not practicing Krishna consciousness.
परंतु आप किसी भी प्रकार का कारण ना बताएं कि कृष्ण भावनामृत में क्यों नहीं अभ्यास कर सकता।
All difficulties are not obstacles, but rather they're opportunities.
सारी जो मुश्किलें हैं वो रुकावट नहीं हैं, परंतु अवसर हैं।
There was one butterfly. You know how you have this caterpillar who turns into a butterfly, but it's within a cocoon. So this butterfly was pushing his way out of this cocoon, and one man was watching.
तो एक तितली थी और अब देखते हैं कि वो तितली बनने का जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होता है। वो अपने कोकून से निकलते हुए बहुत तड़पती है, बहुत संघर्ष करती है।
So he was intrigued, how long will it take for him to get out?
तो एक व्यक्ति देख रहा था कि किस प्रकार से वो अपने जो कोकून है उससे निकलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है, तो उसने सोचा इसमें कितना समय लगेगा।
But at some point the butterfly stopped pushing.
और एक समय ऐसे आया कि जो तितली है उसने धक्का लगाना बंद कर दिया।
And the man was thinking, oh, he cannot get out.
तो उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये अब खुद अपने प्रयासों से बाहर नहीं आ पा रहे।
I will help him.
मैं इसकी सहायता करूंगा।
He got a pair of scissors and cut the cocoon.
वो अपनी कैंची लाया और उसने इस कोकून को काट दिया।
And he was waiting for the butterfly to fly away.
और वो इंतजार कर रहा था कि वो तितली उड़ के अब जाएगी।
But the butterfly did not fly away, it just dropped on the floor.
परंतु वो तितली उड़ ना पाई, वो गिर गई।
The man was thinking he was doing something good, some benefit.
उस व्यक्ति को लग रहा था कि मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, उसका कुछ लाभ के लिए कर रहा हूँ।
But instead of giving benefit to the butterfly, it made the butterfly crippled for the rest of its life.
परंतु लाभ पहुँचाने की बजाय, वो जो तितली है, पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गई।
Because nature's arrangement was that during that struggle period, certain liquids would go to the wings of the butterfly to make the butterfly strong. And by the time it got out, it would then be able to fly.
क्योंकि जो प्रकृति का प्रबंध इस प्रकार से है कि जब वो तितली संघर्ष करती है, एक प्रकार का रसायन होता है जो उसके पंखों में जाता है और उसको शक्ति देता है।
So these different obstacles in life, the difficulties that we have to go through, they're not necessarily bad, they're mostly very good.
तो जितने प्रकार के हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये निश्चित रूप से बुरी हैं, बल्कि ये बुरी नहीं, ये अच्छी हैं।
Therefore, we should keep the door open.
इसलिए हमें दरवाजा खुला रखना चाहिए।
Next difficulty, please enter.
अगली समस्या कृपया आए।
I am ready.
मैं तैयार हूँ।
And one after another, next one, next, next, next.
अगली, 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 अगली।
Don't think that life has to be always so sweet.
ये मत सोचिए कि जो जीवन है उसको बहुत हमेशा मधुर ही रहना चाहिए।
We're in the material world.
हम भौतिक संसार में हैं।
When Krishna approached Prabhupada and asked him, can you go to the material world to preach? Prabhupada said, oh no, not that place. Horrible place.
जब भगवान कृष्ण प्रभुपाद के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप भौतिक जगत में जाके प्रचार कर सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, भौतिक जगत नहीं, बहुत ही भयावह स्थान है वो।
Krishna said, it's okay, I will make all arrangements for you.
भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए सारे प्रबंध करूंगा।
And do you not think he will do the same for you?
और आपको क्या लगता है कि भगवान कृष्ण आपके लिए नहीं करेंगे?
We're doing Krishna's business.
हम कृष्ण के का बिजनेस कर रहे हैं।
If he sees our sincerity of purpose, he will take personal interest and assist us in our efforts to be Krishna conscious.
अगर वो हमारे उद्देश्य की जो सिंसेरिटी है उसको देखेंगे, तो वो व्यक्तिगत रूप से हमके जीवन में रुचि लेंगे और निश्चित रूप से सहायता करेंगे।
Just be happy.
इसलिए खुश रहो,
चैंट हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण जपो.
दिस इज ऑल. वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इनकन्वीनियंसेस दैट वी हैव इन आवर लाइफ एंड ट्राई टू यूज इट. Use it for the purpose of taking further shelter of Krishna's lotus feet.
तो हमारे जीवन में जितनी भी असुविधाएं तकलीफ हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने में.
I could say more, but if you have any questions you may like to ask.
मैं और भी कह सकता हूँ, परंतु अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं.
थैंक यू महाराज फॉर इंस्पायरिंग स्टोरीज. महाराज अगर कमेंट प्लीज करेक्ट मी और एंड आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन. सो जस्ट यू सेड दैट व्हेन इनजस्टिस डन टू सम पर्सन so he just he should try to forget. Just you said the story, you write on the sand and carve on the stone if you have good memories. So I have a question that, like if someone has done injustice to you, so it's like I think that it's a sign of bad memory, and if you forgive that at that time, that it becomes virtuous. So I'm correct or wrong, please? And I have a question.
You need to speak clear. You don't understand what you're saying.
Maharaj, just have a question that if somebody has done injustice to some person, then it's difficult to forgive. So we have a tendency to think over it, and it's like a sign of bad memory if you say that you should forget it or ignore it. But when you forgive, then it becomes virtuous. So we don't forget, but you know, how can we do this thing, you know?
That's mental speculation. All these how do I questions, can be answered very simply.
जितने भी ऐसे प्रश्न होते हैं कि किस प्रकार से करना है, तो उसको बहुत सरलता से उत्तर किया जा सकता है.
Like for instance, one devotee asked Prabhupada, how do I control my mind?
उदाहरण के लिए शिष्य ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि मैं मन को कैसे नियंत्रण करूं?
Prabhupada said, do you think you're better than Arjuna?
तो प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अर्जुन से बेहतर हो?
If Arjuna could not control his mind, what to speak of you?
कि जब अर्जुन अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, तो तुम कौन हो करना?
But what did Arjuna do?
परंतु अर्जुन ने क्या किया?
He took shelter of Rishikesh.
उन्होंने ऋषिकेश की शरण ग्रहण की.
He is the master of the senses and the mind.
वो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं.
So we need to do the same. All these how do I questions are simply answered that you continue doing what you're doing. Chant 16 rounds, follow the four regulated principles, attend the Srimad Bhagavatam class, associate with devotees, go to the holy dham on a regular basis. All these things, this is what's going to help you. No mental speculation.
तो जितने भी ये हाउ टू क्वेश्चंस होते हैं उसका बहुत सरल उत्तर है. जो आप कर रहे हैं उसको करना जारी रखिए. 16 माला का जप कीजिए, चार नियम कीजिए, श्रीमद् भागवतम कक्षा श्रवण कीजिए, पवित्र धाम जाइए नियमित रूप से और भक्तों का संग कीजिए. तो इस विधि को आप बिल्कुल जारी रखिए और ये आपकी असली सहायता करेंगे.
Prabhupada said it takes, he told Shruti Kirti, he told him, it's in Shruti Kirti's book, what is the difficulty? Prabhupada said to him, It takes 12 years just to wake up. We've been sleeping in the lap of Maya for so long. It'll take at least 12 years just to wake up and realize, oh, I'm a devotee. You've been practicing for 12 years, but you're blind, you can't see anything. You're performing your activities, but you have no faith, you have no taste, you have no enthusiasm. So what do you expect?
Srila Prabhupada ne Shuddha Kirti Prabhu ko kaha, ye unki pustak ki kya kathinai hai, isme bhi ye varnan aata hai. उन्होंने कहा लगभग 12 साल लग जाते हैं सिर्फ व्यक्ति को जागने में. 12 साल से अभ्यास कर रहा है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या कर रहा है, बिल्कुल अंधों की तरह चल रहा होता है. कम से कम 12 साल लगते हैं उसको तुरंत जागने में कि और उस श्रद्धा को विकसित करने में.
How long have you been chanting?
आपको कितना समय हुआ है जब कर?
And how old are you?
26.
Are you sure? Are you sure you're 26 years old? You're not 26 years old. You're probably a million years old today.
So आप 26 साल के नहीं हैं. आपकी आयु कहीं लाखों करोड़ों साल है.
We celebrate our birthday. I'm 21 years old. I'm 35 years old. I'm 64 years old. This is an illusion. We've been around here for so long, we cannot even calculate. But we'll just make a calculation just for your benefit. You're a million years old today.
So, hum birthday manate hain. Main aaj 21 saal ka. Aana 35 saal ka ho gaya. Aana 65 saal ka ho gaya. To ye एक भ्रम है. फिर भी आपकी इतनी आयु है कि उसको कैलकुलेट करना भी बड़ा मुश्किल है. फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आज हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आज आप 10 लाख साल के हुए.
Are you going to make a cake?
क्या आप केक बनाएंगे?
Put a million candles on the cake?
और इस केक पे एक 10 लाख कैंडल्स मोमबत्तियां लगाएं?
It's nothing to celebrate.
कुछ भी सेलिब्रेट करने का विषय नहीं है.
So if we've been here a million or 2 million or 3 million years on the lap of Maya, do you think it's going to take only 5 or 10 minutes or 2 months or 3 months to see Gaura Nithai dancing on the altar? No.
तो अगर आपको 20, 30, 50 लाख वर्षों से आप यहाँ पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ कुछ मिनटों का जप करके और 2-3 महीने जप करके आप अल्टर में गौर निताय को नृत्य करते हुए दर्शन कर लेंगे?
And you should say to your mind, hey mind, come here.
हाँ, आपको अपने मन को इस प्रकार से कहना चाहिए, हे मन इधर आओ.
Come, sit down.
आओ यहाँ बैठो.
Something to tell you.
मुझे आपको कुछ बोलना है.
I've been serving you lifetime after lifetime after lifetime after lifetime after lifetime after lifetime.
मैं आपको जीवन परंतर जीवन परंतर जीवन परंतर जीवन परंतर जीवन परंतर जीवन परंतर तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ.
But this lifetime I'm not going to serve you.
परंतु इस जीवन में तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा.
I'm serving Krishna.
मैं कृष्ण की सेवा करूँगा.
Go away.
Jao, usko bhej do.
You come back in 30 years and we'll do more negotiation.
30 saal baad wapas aana aur hum dobara samjhauta karenge.
So just like a dog when he's chastised by his master, the mind goes, oh, he's serious.
To jaise ki ek kutte ko uske malik se bahut daant padti hai, तो उसी तरह से वो देखेगा कि ओ ये गंभीर है.
And then after 30 years you can call the mind back.
तो 30 साल बाद आप मन को दोबारा बुला सकते हैं.
Mind, come here.
हे मन इधर आओ.
Yes, Maharaj.
हाँ महाराज.
So how do you feel? How do you feel?
आपको कैसा महसूस होता है?
Wow. I feel wonderful.
मुझे बहुत अद्भुत महसूस होता है.
You were right. I was chanchalam. I was all over the place.
आप सही थे. मैं बहुत चंचल था. हर जगह मैं व्याप्त था.
Now I don't go anywhere.
अब मैं कहीं नहीं जाता.
I do go sometimes to Vrindavan Dham.
कभी कभार मैं कुछ समय के लिए वृंदावन धाम जाता हूँ.
मायापुर धाम.
मायापुर धाम.
महाराज महाराज
महाराज
महाराज I want to be a devotee. I want to be a devotee.
मैं एक भक्त बनना चाहता हूँ.
I want to take off these shorts.
मैं ये निक्कर उतारना चाहता हूँ.
I want a dhoti and kurta.
मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ.
My own bead bag and beads.
मैं अपना खुद की माला जपना चाहता हूँ.
तिलक.
तिलक लगाना चाहता हूँ.
I want to be your friend.
मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ.
प्लीज
कृपया.
प्लीज
कृपया.
That day will come.
वो दिन आएगा.
Your mind no longer your enemy, but your best friend.
जब आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु ना होके सबसे बड़ा मित्र होगा.
But you got another 30 years.
और आपको अगले 30 साल तक जारी रहना.
Is that okay?
Okay, ठीक है.
Just take your time. Everything is. Perfect and complete within Krishna consciousness.
तो आप अपने समय लीजिए. कृष्ण भावनामृत में हर चीज पूरी होगी. अपने समय के साथ वो उपलब्ध होगी.
Krishna will arrange everything.
भगवान कृष्ण हर चीज का प्रबंध कर देंगे.
All you need to do is follow the four regulative principles and chant just 16 rounds and do some service.
सिर्फ जो आपको करना है चार नियमों का पालन करना है, 16 माला का जप करना है और कुछ सेवा करनी है.
And try to give others Krishna consciousness too.
और प्रयास करना है कि अन्यों तक के कृष्ण भावनामृत पहुंचे.
Everything else will be arranged.
और हर चीज उसके बाद सब प्राप्त हो जाएगी.
Srila Prabhupada ki jai.